मधुबन में हम सब ने यहाँ पर 11-12 साल दीदी की पालना ली और उनकी विशेषताएं जब सामने आती हैं और जब हम आपस में पुराने भाई बहनें मिलते हैं तो बहुत सी बातें साकार रूप में इमर्ज हो जाती हैं कि दीदी अगर होती तो क्या करती। जब हम शुरू शुरू में आए 71-72 में, दीदी की ही पालना विशेष मधुबन में थी, दादी साथ में थी। दीदी की बहुत सी विशेषताएं जो हम सब के काम की हैं वो हम सुनाएंगे, क्योंकि विशेषताएं सुनना माना उन विशेषताओं को अपने स्वरूप में ले आना। बहुत कुछ सिखाया दीदी ने हम सबको और जो आज आप सबकी पालना, आप सबको बाबा की मुरलियों में प्रश्नोत्तर, वरदान, स्लोगन या सार मिल रहा है, ये दीदी की ट्रेनिंग की कमाल है। बहुत प्यार से मुझे शुरू शुरू में, मैं बहुत छोटा आया था, दीदी मुझे बहुत प्यार से क्वेश्चन आंसर निकालना सिखाती थी, कैसे क्वेश्चन निकालना चाहिए। मुझे बिल्कुल ही एक छोटे से गांव से आया था, कुछ नहीं आता था, लेकिन पहले पहले जब संकल्प किया मुझे टाइप सीखनी है तो टाइप सीखने के साथ साथ एक शर्त दीदी ने ही रखी कि तुम्हें सिंधी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि बिना सिंधी सीखे तुमको टाइप में कुछ भी काम नहीं मिलेगा, क्योंकि सब दादियां बाबा का संदेश, दादियों की राइटिंग, बाबा की मुरलियां सिंधी में लिखी हुई है। सिंधी लैंग्वेज नहीं है, सिंधी लिपि है, राइटिंग जैसे रोमन इंग्लिश वगैरह लिखते हैं। तो मैंने कुछ दिनों में ही ये सिंधी सीखी और टाइप सीखी मधुबन में। दीदी की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि दादी यहाँ पर बैठ के मुरली सुनाती थी, पहले पहले यही हाल था, और ये दीदी की सीट थी सामने की, ये वाले सोफा नहीं थे कोई भी, एक भी सोफा इस हाल में नहीं था। बाद में जब दीदी को थोड़ा सा तकलीफ हुई शारीरिक तो ये सोफा एक जो रखा है ये दीदी का था बस। तो जब दादी यहाँ बैठ करके मुरली सुनाती थी और दीदी सामने प्रश्न लिखती थी, हम सभी मधुबन में 30-40 भाई बहने उस समय थे केवल, तो ये पहली लाइन बैठती थी, निर्भय भाई, आनंद किशोर दादा, विश्वरतन दादा, चंद्रास दादा पहले लाइन में बैठो और उसके पीछे मधुबन के दूसरे भाई, इधर दीदी इधर दूसरी बहने। तो ये दृश्य था, दीदी प्रश्न लिखती थी मुरली से और कहती थी मुरली पूरी होते ही या बीच में कि मैं बैडमिंटन खेलूंगी। बैडमिंटन माना मैं प्रश्न पूछूंगी और आप सबसे उत्तर चाहिए, पूरे क्लास को मैं फेल करूंगी। कोई भी दीदी के बनाए हुए प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता था, ऐसे ही घुमा के लिखती थी और फिर बताती थी कि सब फेल। मुरली उसी समय सुनी, ऐसे नहीं बाद में पूछा गया, 15-10 मिनट एक क्वेश्चन आंसर का क्लास होता ही था जिसमें सारे क्लास से पूरी मुरली का सार इसेंस 5-10 मिनट में रिवाइज किया जाता और उसमें दीदी के प्रश्न होते थे और सबके उत्तर होते थे और फिर मुझे कहती थी जाओ ये सिंधी में मैंने लिखे हैं प्रश्न, तुमको जो अच्छा लगे वो टाइप करके ले आओ, सभी को भेजना है। तो सिखाने का एक तरीका था कि अच्छा लगे वो ले आओ, सारे सेंटर्स की जितनी पोस्ट आती थी बाबा के बाद दीदी उसका 10 बजे तक उत्तर लिखती थी, कुछ भी हो जाए, नाश्ता बाद में, पहले सभी बैठ करके सुदादी की ऑफिस में जो ऑफिस है दीदी बैठ जाती थी और 5-6 भाई बहनों को लेकर के उनसे कहती थी प्रश्नोत्तर निकाल करके टाइप करके ले आओ, एक साइड में तुम्हारे प्रश्नोत्तर रहेंगे और दूसरी साइड में हाथ से पत्रों का उत्तर दिया जाएगा। तो चाहे जितनी पोस्ट हो 3-4 बहनों को बिठा देती थी और सबके उत्तर दीदी खुद लिखवाती थी, खुद भी लिखती थी और सबको कहती थी जितने पत्र आए सबका उत्तर जाना चाहिए। तो सिखाने का एक तरीका था। तो सबसे पहली विशेषता दीदी की थी कि गॉडली स्टूडेंट लाइफ अंत तक डायरी और पेन हाथ में रही है। भले स्कूल कॉलेज में कभी नहीं गई, हिंदी में साइन भी नहीं आता था करना, सिंधी में ही साइन होती थी। दीदी को एक बार बाबा ने कहा, सिखाता था बाबा भी, हंसता भी था, दीदी धृतराष्ट्र लिखो। तो दीदी ने ये नहीं कहा कि मुझे लिखना नहीं आता, तो बोलने लगी कि मैं अंधे का नाम क्यों लिखूं। बड़ी रमणीकता से जवाब देती थी, अंधे का नाम मैं नहीं लिखूंगी। तो कहने का मतलब है कि रमणीकता के साथ बहुत मनोरंजन के खेल भी कराती थी। इस हाल में बहुत खेल किए हम सब ने दीदी के साथ, लेकिन एक पढ़ाई के ऊपर खुद का ध्यान और पूरे क्लास को ऐसे बांध के रखा था कि कोई भी अब्सेंट नहीं हो सकता। रात्रि क्लास में भी अगर कोई ना आए मधुबन वाला, तो दीदी कहती थी, क्या हुआ है तुमको, क्यों नहीं आए आज। एक एक पर दृष्टि रखना और सवेरे क्लास के बाद सबको बुलाना कि आज क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है, क्यों नहीं आए क्लास में, कहाँ गए थे, क्या था। तो एक एक पर पूरा पहरा था। और यहाँ तक मुझे याद है, जब अमृत वेले का योग शुरू हुआ तो बहुत आलस्य आता था सवेरे सवेरे 4 बजे उठने में। तो दीदी दादी दोनों ही, हम लोग भी अब लाइट हाउस ये है यहाँ रहते थे, तो सवेरे सवेरे योग के समय ऊपर से साल ओढ़ करके माताओं की तरह और पहुंच जाते थे कमरों के बीच में कि कौन कौन सोया हुआ है, कहाँ कहाँ सोया हुआ है। और बस कहती थी बोलना नहीं, कोई जा देख ले दीदी को तो बोलना नहीं, और बस देख करके आ जाती थी कौन कौन अभी सोए हैं और कौन कौन योग में गए हैं या जाग स्नान पानी कर रहे हैं, देख करके चक्कर लगा करके सबकी हाजिरी नोट। और फिर सब कांपने लगे कि अब क्या होगा, पता नहीं दीदी दादी आके गई यहाँ पर, चक्कर लगा के गई है। और जो क्लास पूरा हुआ फिर एक एक को हाजिर करना, क्या हुआ, क्यों नहीं आए, क्यों सोए थे, रात को नींद नहीं आई, क्या तकलीफ है, क्या ना। बहुत अच्छी तरह से पालना, जिसको हम कहते हैं एक एक बात का ध्यान पालना में, हर बच्चे की ऐसी पालना की ये पढ़ाई पर इनका पूरा ध्यान रहे, जितना दीदी का खुद पढ़ाई पर ध्यान था उतना सारी क्लास को पढ़ाई के ऊपर बहुत ध्यान खिंचवाती थी। कि बाबा के घर में आए हो, सेवा कर रहे हो, समर्पित हुए हो, लेकिन पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ध्यान रहे कि अगर हम सभी केवल सेवा कर रहे हैं, कोई कोई कहते थे दीदी इसने क्लास मिस किया, ये नहीं आता है क्लास में, कितना भी कहो नहीं आता है, तो कहते कंप्लेंट नहीं करो। कुछ बाबा को ऐसे मजदूर भी चाहिए जो सफेद ड्रेस वाले हैं, जो नौकरी के बिना खा रहे हैं, सो रहे हैं, यज्ञ की सेवा कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। कई सेवा नहीं करते हैं, सिर्फ खाते पीते सोते और पर चिंतन करते हैं। अगर उनकी कोई कंप्लेन करता था तो कहती थी दीदी ये राजधानी स्थापित हो रही है, इसमें हर एक राजा नहीं बनेगा, कोई राजा कोई रंक, कोई गरीब कोई साहूकार, कोई दासियां भी चाहिए, दास भी चाहिए, इसलिए चिंता नहीं करो इनके भी। कर्म फिलॉसफी का बहुत स्पष्ट ज्ञान, कभी कंप्लेन के रूप में कोई जाए दीदी के पास, ऐसे सुन करके उसकी बुद्धि उन बातों से भर जाए, उसका दृष्टिकोण बदल जाए। कभी दीदी के दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं देखा। अगर कोई बात है भी तो उसी समय उस व्यक्ति को बुलाना जिसकी कंप्लेन हमने की दीदी के आगे, तो ऐसे नहीं सुन करके अच्छा देखूंगी सुनूंगी बाद में, नहीं, तुम बैठो यहीं पर, मैं उसको बुलाती हूँ। उसी समय बुला करके क्या बात है, कैसी बात है, क्यों ये हुआ, उसी समय फौरन फैसला कर देना। और फिर अगर कोई है भी कोई बात संस्कारों की तो उसको मिला करके समाप्त करना। तो एक बहुत सुंदर पालना कहें, ट्रेनिंग कहें, दीदी का देने का तरीका। और हमेशा एक बात कहती थी कि आप समझते हो कि हम इस पांडव भवन में मधुबन में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रहते हुए भी संघ की बहुत संभाल करना, संघ का बहुत ध्यान रखना। कोई कोई कहते थे संघ तो यहाँ ब्राह्मणों का है, पवित्र आत्माओं का है, संघ में क्या संभाल चाहिए। कहती थी नहीं, कई आत्माएं अगर कोई यज्ञ की कोई भी प्रकार की ग्लानि करती हैं, पर चिंतन करती हैं, पर दर्शन करती हैं, निमित्त आत्माओं के बारे में, बाबा की मुरली के बारे में अगर कोई अपनी मन मत ऐड कर देती हैं, अगर अपनी बातें मिक्स कर देती हैं, तो ऐसी आत्माओं से भी खबरदार, इनके संग से भी अपने आप को बचाना। तो संग की बहुत परहेज चाहिए, संगठन के बीच में अगर हम अपनी उन्नति करना चाहते हैं। कई आत्माएं अलबेली हैं, आलसी हैं, कईयों को पढ़ाई का कदर नहीं है, बड़ों का सम्मान नहीं है, बड़ों के प्रति ऐसी ऐसी बातें सोचते और बोलते हैं, कोई के मुरली सुनाने के ऊपर टीका कमेंट्स कर देते हैं, कोई की किसी बात पर कमेंट्स कर देते हैं, रहते यहाँ है लेकिन वैरायटी संस्कार और वैरायटी आदतें हैं। उसमें रह करके जैसे दीदी के संदेश में आज हमने सुना कि चलते चलो, बढ़ते चलो, न इधर देखो न उधर देखो, ये उस समय के महावाक्य हैं दीदी के। हमेशा कहती थी अगर तुमको आगे बढ़ना है तो साइड सीन को कभी नहीं देखना। अगर किसी को भी देखा ये ऐसा है वो ऐसा है, इसने ये किया उसने ये किया, तो तुम्हारी नैया जो है पान नहीं लगेगी, तुम भी उनको देख करके ठहर जाओगे। इसलिए शिक्षा देने का तरीका बहुत मीठा और डायरेक्ट था, कोई भी बात छिपानी नहीं। अगर किसी की बात सुन ली है तो ऐसे नहीं उसकी बात को छिपा दें, दबा दें, उसको प्यार से बुला करके समझा करके उस बात को देना और हक से अधिकार से देना कि तुम्हारी बात ही है, बहुत नम्रता बहुत प्यार स्नेह के साथ। इसलिए दीदी की एक विशेषता जो बाबा कहता है कि ये विशेषताएं तुम बच्चों के अंदर होनी चाहिए, एक लव और ला का बैलेंस प्रैक्टिकल में दिखाई देता, माँ के रूप में बहुत प्यार सबके बच्चों के प्रति, लेकिन एक लाफुल स्टेज ऐसी कि अगर कोई भी अलबेला है, कोई भी प्रकार की गलती कर रहा है, तो उसी समय बुला करके उसको सिखाना, उसको बताना, उसको गाइड करना, कहीं भी कोई मिसगाइड हो रहा हो बहुत अच्छी तरह से उसको बुला करके बाबा की श्रीमत क्या है, क्या बाबा चाहता है, क्योंकि दीदी का बाबा की श्रीमत से बहुत रिगार्ड, बहुत प्यार रहा शुरू से लेकर के। मैं तो देखता था कि बाबा ने कहा है बस मुझे करना है, बाबा ने ये कहा है, बाबा ये कहता है, व्यक्तियां क्या कहते हैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं देखना, लेकिन बाबा का कहना और हमें मुझे करना है। तो 5-7 बातें जो विशेषता की मैंने नोट की थी दीदी की, मेरे ध्यान पर आई कि एक तो सबसे नंबर वन गोपिका, उसका नाम ही था गोपी, बचपन का ही नाम था, लौकिक नाम था गोपी, और वो गोपी ऐसी गोपी कि एक बाबा दूसरा न कोई, एक के सिवाय दूसरा कोई भी बुद्धि में ना आए। और शुरू से यही अंत तक पाठ पढ़ाया कि अगर किसी के साथ किसी की थोड़ी भी रख गई, किसी की विशेषताओं पर भी गई, तो हमेशा कहती थी तुम उस पर प्रभावित हो गए हो क्या, तुम उसे शादी करना चाहते हो क्या, सीधा ये, ऐसे नहीं छिपा करके बोलना, जरा भी कोई ऐसी बात करे, कहीं एक पर्सनल बात की रिपोर्ट पहुंच जाए कि इसके साथ इसकी बात हो रही थी, ये कुछ है, तो दीदी उसी समय बुला करके उसका फैसला करेगी, क्यों, क्या चाहिए, क्या चक्कर है। हमेशा एकदम ठीक ठीक गाइड करना, क्योंकि बाबा के सिवाय किसी भी आत्मा में किसी की बुद्धि जुट न जाए। इसलिए हमेशा कहते थे जब तुम किसी के क्लास टाइप करते हो किसी का नाम नहीं लिखा करो, क्यों नाम रूप में किसी के फंसना है, भले किसी का भी क्लास हो, हमेशा कहती थी किसी का नाम नहीं लिखना, पॉइंट्स लिख करके लियो। बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स क्लासेज भट्टियां चलती थी, मैं क्लास टाइप करता था तो मुझे कहती किसी का नाम डालने की जरूरत नहीं, अभी तो सबके नाम पढ़ने लगे, फलाने का क्लास है, फलाने का क्लास। हमेशा ध्यान खिंचवाती थी कि किसी भी आत्मा के नाम रूप में मुझे नहीं फंसना है, एक बाबा का ही नाम याद रहे, बाबा ने हमको पढ़ाया है, बाबा ने विशेषताएं दी है, बाबा का ये ज्ञान है। इसलिए गोपिका रही तो अंत तक एक बाबा दूसरा न कोई, सबका ध्यान खिंचवाया और खुद भी उसी लगन में सदा बाबा 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 ही करती, हर बात में बाबा बैठा है, बाबा करेगा। इसलिए कई आत्माएं जब विदेश की सेवा शुरू हुई, दीदी इंग्लिश नहीं जानती थी लेकिन दीदी की दृष्टि से उसको साक्षात्कार होते थे, कई आत्माओं को साक्षात्कार, वैकुंठ के साक्षात्कार, सतयुगी दुनिया के नजारे, दीदी योग कराए और उसको साक्षात्कार हो जाए, तो ऐसी सुंदर स्थिति दीदी ने अपनी बनाई, जो उनकी स्थिति से लगता था कि सचमुच ये योगी तो आत्मा है, एकदम बिल्कुल अपने योग युक्त अवस्था में। जब 4 बजे का योग शुरू हुआ तो बोली मैं योग कराऊंगी, सवेरे सवेरे आकर के यहाँ संदली पर पहले पहले योग में बैठ जाना 4 बजे, सब अपने आप भाग करके आते थे कि दीदी योग करा रहे हैं। तो एक पढ़ाई की तरफ जितना ध्यान, उतना एक गोपिका का ध्यान, एक ला और लौ का पूरा बैलेंस, एक यज्ञ के प्रति इतनी निष्ठा, इतनी भावना, यज्ञ की सेवा है, रुकनी नहीं चाहिए। कुछ भी हो, कैसी भी सेवा हो, अनाज साफ हो रहा है, पहुंच गई, खुद करने लगी बैठ करके, अपने आप सब करेंगे, सब्जियां कट रहे, कोई काटने वाले नहीं आते हैं, दीदी बैठेगी, अपने आप सब आ जाएंगे। तो खुद आकर के खुद सेवा में लग जाना और यज्ञ की सेवा को इतनी सहज रीति से करा देना। मुझे याद है, हम लोग धोबी घाट करते थे, यहाँ तो अभी मशीनें हैं, उस समय हाथ से पाटे पर कपड़े धोते थे, शाम को भट्टी चढ़ाते थे और सुबह धोते थे, और जब धो करके पूरे करते तो दीदी गरम गरम हलवा बना करके लाती थी। रोज डेली का रूटीन था कि भट्टी धुलाई हो गई, कपड़े धुल गए, तो दीदी सबको अपने हाथ से गरम हलवा खिलाएगी, उसी समय खिलाएगी, चाहे जितनी बरसात हो, ठंडी हो, लेकिन एक नियम बना था, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो इतनी अथक सेवाएं करते हैं उनको रिटर्न भी देना है, पालना भी करनी है। इसलिए लौ और ला का बहुत सुंदर बैलेंस उनके जीवन में हमने देखा। परखने की शक्ति इतनी थी कि कौन सी आत्मा किस क्वालिटी की है, उसको क्या चाहिए। बहुत बड़े बड़े VIP जो आए संपर्क में बाद में, दीदी ने उसको ऐसा परखा कि अगर वो कहे मेरे पास टाइम नहीं है, तो भी उसको मुरली के लिए बांध दिया। कितना बड़ा VIP है, जैसे यहाँ पर एक लालचंद वत्स थे जो बाद में सरेंडर हुए और उन्होंने शरीर छोड़ा यहाँ, लेकिन जो लालचंद वत्स जब आए शुरू शुरू में, दीदी ने उसको इतना परख लिया, कहा तुमको एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है। अब वो इतना बड़ा वकील सुप्रीम कोर्ट का, उसको दीदी कह रही तुमको एक दिन मुरली नहीं मिस करना, बोला ऐसा कैसे हो सकता है। बोला नहीं, मैं तुमको युक्ति बताती हूँ, विधि बताती हूँ, तुम कहीं भी हो, तुम सेंटर पर बोलना फोन करके कि तुम आज दीदी हमको मुरली का सार सुनाओ, जो सेंटर तुमको समीप हो। उन्होंने लास्ट तक भी अपनी डायरी में नोट किया कि मैंने इतने दिन रेगुलर पढ़ाई की है, एक दिन भी मुरली की पॉइंट मिस नहीं की, चाहे वो फोन पर सुनी, चाहे कोई भी केस हो, चाहे उनके घर में मौत भी हो गई किसी की, फिर भी उस आत्मा ने एक दिन भी बाबा की मुरली मिस नहीं की। दीदी ने उससे वैसा वायदा करा लिया। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, एक परखने की शक्ति और उसको अपने संगठन में बांधने की शक्ति, परख लिया सिर्फ नहीं, लेकिन उसकी कैसे पालना की जाए, उसको कैसे हर प्रकार से खातरी की जाए। ज्ञान योग की पालना सबसे फर्स्ट, सिर्फ टोली खिला करके पालना नहीं, लेकिन ज्ञान से पालना, उसकी नींव मजबूत हो, सिर्फ स्नेही नहीं बने लेकिन पक्का बाबा का निश्चय बुद्धि बच्चा बन जाए, ये एक अंदर से लगन थी कि जो बाबा पर, बाबा का बने, वो बाबा पर न्योछावर हो जाए, उसका तन मन धन समय सब कुछ सफल हो, कुछ भी व्यर्थ न जाए। तो एक बहुत सुंदर परख करके उसको बाबा के दूर में बांध देना, ये एक बहुत बड़ी विशेषता है आत्मा की। हम सभी भी परखते हैं, लेकिन परख करके उसके सही मार्ग नहीं दे पाते। परखने के साथ साथ उसको सही मार्गदर्शन मिले और उसको हर प्रकार से ज्ञान योग की पालना दी जाए, ज्ञान से पालना दे करके उसकी नींव को मजबूत किया जाए। वर्तमान समय आत्माएं निकलती हैं, लेकिन नींव मजबूत नहीं है, धारणाओं की नींव, जो आज बाबा कह रहे थे मुरली के अंदर ब्लड कनेक्शन बढ़ रहे हैं, ब्लड कनेक्शन से आते हैं, परिवार के परिवार आ जाते हैं, लेकिन उसके अंदर एक रूहानियत का कनेक्शन जुट जाए, ब्लड कनेक्शन समाप्त हो जाए, वो भावना ही समाप्त हो जाए, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा बाप है, वो लौकिकता समाप्त हो जाए, ब्लड कनेक्शन। वो पाठ जो बाबा पढ़ाया शुरू से लेकर के, दीदी को ऐसा पक्का था कि कई भी आत्माएं हो, लौकिकता से व्यवहार न करें, लौकिकता इनकी समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि हम सबका रूहानी कनेक्शन है, ब्लड कनेक्शन नहीं है। इसलिए आज बाबा ने कहा बच्चे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है, बाबा की मुरली में अंडरलाइन करो, कैसे साकार में ही बाबा कहता था ये स्कूल की छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई नहीं, ये यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है, इसमें भाई बहन का भी भान न रहे, आत्मा हूँ, ये आत्मा है, इतनी दृष्टि पवित्र और शुद्ध बन जाए क्रिमिनल संस्कार समाप्त हो जाए। जो बाबा ने वो पढ़ाई उस समय पढ़ाई आज से 35-40 साल पहले, अभी तक भी हम उसका पुरुषार्थ कर रहे हैं। सेंसिबल बच्चे, बाबा कहते सेंसिबल बच्चे वो हैं जरा भी जिनकी वृत्ति दृष्टि में दैहिक भान ना आए, ब्लड कनेक्शन ना आए, इतनी अंदर से आत्मा का पाठ पक्का हो, इतना रूहानियत का पाठ पक्का हो, तो ऐसे आत्माएं अपनी संपन्न स्टेज को नहीं प्राप्त हुई। संपूर्ण स्टेज बनाई, संपन्न स्टेज बनाई, बाबा के समान बनी और बाबा ने उनको अपने यज्ञ की सारी जवाबदारियां सौंप दी। साकार में ही मम्मा के बाद दीदी को अपना राइट हैंड बनाया था बाबा ने। लेकिन साथ में जब अव्यक्त हुए तो दादी के साथ दीदी और दीदी के साथ दादी को ऐसा बांध दिया कि दोनों ही यज्ञ की पालना करेंगे, एक मधुबन की अच्छी तरह से पालना करेंगे और एक सेवा की, जो भी सेवाएं होंगी उसमें आगे बढ़ेंगे। तो दीदी मधुबन की एक हड्डी सेवा, हड्डी पालना, मधुबन निवासियों की एक जिगरी पालना की, कैसे मधुबन में रहना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसी रॉयल्टी होनी चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, कितनी शुद्धता होनी चाहिए, वो बहुत प्रैक्टिकल करके सिखाते हैं। करके सिखाना, सिर्फ बोल करके नहीं, खुद करना, पहले कर लेना फिर कहना। कहती थी चलो घंटी बज गई, क्लास में आना हो, पहले घंटी बजती थी, यहाँ एक बेल लगी हुई थी, बेल पर जैसे यहाँ घंटी बजाते हैं ना स्कूलों में, बच्चों को छुट्टी होती है तो बेल बजती है, तो मधुबन में भी एक सिस्टम बना हुआ था, भोजन की बेल, क्लास की बेल, जैसे भी रिकॉर्ड बज जाते हैं, वो रिकॉर्ड नहीं थे, बेल बजती थी, घंटी बजती थी, चलो भोजन का टाइम हो गया घंटी बज गई, क्लास का टाइम हो गया तो घंटी बज गई, कपड़े अगर उठाने हैं, कपड़े धुल करके आ गए तो कौन किसको बताएगा कि अलग अलग हो गए। तो हमारी भूरी दादी है अभी यहाँ, इतनी बुजुर्ग है, आप सभी देखते हो कितनी दुआएं उसको मिली होंगी, बहुत सेवाएं की अपने जब स्वस्थ थी, अभी भी बहुत सेवा कर रही है, 90 साल के ऊपर है लेकिन रोज भोजन खिलाने जाती है, कितनी बड़ी विशेषताएं हैं। तो उस समय क्या करती थी, भूरी दादी के हाथ में घंटी होती थी, जब कपड़ा अलग हुआ पूरे घर में घूम करके चारों तरफ से घंटी बजाती थी, ऐसे ऐसे ले जाओ अपने अपने कपड़े सभी उठा करके, ड्यूटी थी, डेली बजती थी दोनों टाइम, सुबह शाम, और रोटी की, खाने की, भोजन की, तीनों टाइम बेल बजती थी, उसको बाबा बेल बोलता है। तो वो एक दिनचर्या, तो दीदी कहती थी क्लास का टाइम हो गया, बेल बज गई, चलो दीदी पहले जा रही, यहाँ आके बैठ गई 9 बजे क्लास में, ऐसे नहीं 9:30 बजे कोई आ रहा है, कोई 9:15 बजे आ रहा, सबको आना ही है। तो मैं कहता था कि दीदी इतनी एक्यूरेट, इतनी अलर्ट, हर बात में सब कुछ करके सिखा दिया। कहती थी अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम क्लास में आते हो ना तो डायरी पेन तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, तुमको पढ़ना लिखना नहीं आता कोई बात नहीं, तुमको देख करके लोगों को आएगा कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट लाइफ है। बुजुर्गों को भी कहता था तुमको स्टूडेंट लाइफ में रहना है, स्टूडेंट लाइफ तो बहुत बेस्ट लाइफ मानी गई है, तो हम सभी स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के लिए जरूरी है अपने हाथ में डायरी पेन होना। कुछ भी अच्छा लगता है एक आधी बात नोट कर लिया, नोट कर लिया तो अपनी हो गई, हो कभी भी पढ़ेंगे कभी भी देखेंगे तो उस पर चिंतन चलेगा। तो एक दीदी हमेशा ऐसे सिखाया, ऐसे पढ़ाया, और आज जो आत्मा एक शरीर छोड़ी है, शांति माता, शायद नाम सुना हो आप लोगों ने, 3-3.5 साल हॉस्पिटल में रही है, बहुत कर्म भोगना थी। लेकिन शुरू शुरू से जब से मैं यहाँ मधुबन में प्रवेश हुआ, पहले पहले उसको उसके साथ ही सेवा मुझे दी गई, यहाँ आवास निवास विभाग जो भी चंद्रपाल भाई वगैरह संभालते हैं उसको पहले आवास निवास विभाग में ड्यूटी थी, और मैं और एक भाई पाठक जी हैं जो साबुन बनाते हैं, इन दोनों को दीदी ने शांति माता के पास सेवा के लिए रख दिया। बहुत समय तक हमने बिस्तर उठाए, सबके आते थे बिस्तर, मजदूर तो थे नहीं, सब बिस्तर लगाना, सबके बिस्तर सबके पास पहुंचाना, तो शांति माता के साथ हम लोग बहुत समय सेवा करते थे। फिर बाद में दूसरे भाइयों के हाथ में डिपार्टमेंट आ गई, फिर तो भाई लोगों ने संभाल लिया, और अभी थोड़े समय से काफी बीमार रही, लेकिन बहुत सेवाएं पहले पहले उसने भी की हैं यज्ञ में। तो बाबा के घर में कई विशेष आत्माएं अपनी विशेषताओं के आधार से आती हैं, समर्पित होती हैं, अपनी सेवाएं देती हैं, और जो जिसकी विशेषता है वो अपना यादगार भी छोड़ के जाती है, और अगर कोई आत्माएं सिर्फ खाती पीती और सेवा लेती तो बाबा कहता है ये कोई पिछले जन्मों का कोई भगवान के लिए बहुत कुछ किया होगा। एक भाई से एक बार वर्कशॉप कराई हमने, हमने पूछा कि आप लोगों को मधुबन निवासी बनने का इतना बड़ा भाग्य जो मिला है, क्या विशेषता है ये? कोई तो विशेषता होगी, कितनी आत्माएं तरस रही हैं, तड़फ रही हैं, बेचारी चांस नहीं मिलता है, आ नहीं पाती, कोई ना कोई बंधन है। तो एक भाई ने बहुत अच्छा उत्तर लिखा अपने वर्कशॉप के अंदर, जब मैंने उसे बोला सुनाओ, तो बोलता है भाई साहब जितने पुराने भगत थे उन सब भक्तों से हम लोगों ने कोई अलग से भक्ति की है। है ना बात कि भगत तो हम सभी थे, जितने भी बाबा के बच्चे हैं जो भगत हैं वही तो बाबा के बच्चे बनेंगे ना, क्यों कहता है जो पुराने भगत हैं वो मेरे बच्चे बनेंगे। लेकिन एक समर्पित हो जाना और समर्पित होने के बाद भगवान की पालना के अंदर पलना, खिला रहा है, बिठाया है, पढ़ा रहा है, सब कुछ, सब प्रकार की चिंताएं हर ली, कोई चिंता नहीं दी अपने बच्चों को, ऐसा भाग्य जो भगवान के घर में हर प्रकार की पालना मिल रही है और इतना ऊंची नजरों से लोग देख रहे हैं, तो जरूर हमने कोई उनसे भक्तों से अलग हट करके भक्ति की होगी, शिव बाबा की कोई विशेष भक्ति की है जिसका फल मिला है। तो इसलिए हम सभी बहुत अनन्य और कोई अन्य प्रकार की सेवा, अन्य प्रकार की भक्ति कहें या अन्य प्रकार का कोई ऐसा पुण्य कर्म किया है जो हमें भगवान के घर में रह करके सेवा करने का भाग्य मिला है, अगर इस अपने भाग्य को हम सब पहचान जाएं, ये जो सेवा का भाग्य मिला है किन पुण्य कर्मों का है, जो यज्ञ मन इच्छित फल देता है, अगर कोई दिल से सेवा करे, प्यार से सेवा करे, अपना समझ करके सेवा करे, किसी को न देखे, ये करता है वो करता है, ये नहीं किया उसने मैं क्यों करूं, ये नहीं, एक अपनापन रख करके कि मेरा बाबा का घर है, मुझे यज्ञ की संभाल करनी है, मैं यज्ञ का रक्षक हूं, तो ये यज्ञ उसको मन इच्छित फल देने वाला है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो कल्प वृक्ष का चित्र है, ये कल्प वृक्ष के नीचे हम सभी कपिल देव और कामधेनु माँ के साथ तपस्या कर रहे हैं, जिनके बाप और माँ कामधेनु और कपिल देव कपिल मुनि है शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के साथ जोड़ी है, शिव बाबा कंबाइंड है तो कपल हो गया ना, कपल युगल को कहते हैं ना, तो ये कपिल मुनि है ब्रह्मा और कामधेनु माँ है। तो जो कामधेनु माँ और कपिल मुनि बाप हम सब के साथ है, जिसके साथ हम तपस्या कर रहे हैं, उनकी कौन सी कामना बच सकती है? जो कामनाएं होंगी कोई सूक्ष्म में भी हो, बाबा कहता कामनाएं नहीं रखो, लेकिन अगर कोई भी सूक्ष्म कामना है तो बाबा उन सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए बंधा हुआ है, सिर्फ हम बाबा के यज्ञ की दिल से और प्यार से सेवा करें, अपना समझ करके करें, दूसरों को नहीं देखें, ये करता है वो नहीं करता, मैं ही मजदूरी करता रहूं क्या, अगर ये भावना भी है, माना उसने बाबा के यज्ञ की सेवा का महत्व नहीं समझा है। हम लोगों को तो सेवा का ही रिटर्न मिला है, जो बाबा ने सेवाएं दी, जो दीदी ने कहा, जो दादी ने कहा, कभी भी ये नहीं उठा ये सेवा मैं क्यों करूं, चाहे जितनी छोटी सेवा हो। मुझे याद है मैंने 13 साल तक दीदी के और छोटे हाल में झाड़ू लगाई है, 13 साल। दीदी कहती थी मजदूरों को हम अपने कमरे में नहीं आने देंगे, बाबा के कमरे मजदूर घुस के झाड़ू लगाएंगे, नहीं क्लासरूम में मजदूरों से झाड़ू नहीं लगवानी, वो तो पतित है, नहाते नहीं है, धोते नहीं, तुम लोग करो सब जो करते हो। तो जिन्होंने बहुत प्यार से यज्ञ की सेवाएं की है, हड्डी हड्डी लगाई है, मुझे अनुभव हो रहा है अभी भी ये लगता है कि सचमुच बाबा हमारा कामधेनु माँ और कपिल देव बाप हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए बंधा हुआ है, कोई भी कामना रह ही नहीं सकती है अगर हम बहुत प्यार से बाबा के यज्ञ की संभाल कर रहे हैं, सेवा करते हैं। ओम शांति। मुझे कहा गया कि कोई बहन अनुभव सुनाना चाहती है, सुनाएंगी, आओ 5 मिनट में सुनाओ।
ओम शांति। अति प्रिय परमपिता परमात्मा की, हम मीठी मीठी संतान जो 650 करोड़ आत्माओं में से भी भगवान ने हमें चुना है, हमें सिलेक्ट किसने किया है, स्वयं भगवान ने किया है, तो अपने आप को भाग्यवान समझते हैं ना। तो मैं भी कुछ ज्यादा नहीं बोलती हूँ, मैं मेरा अनुभव ही सुनाती हूँ अभी। कहते हैं ना जहाँ चांद है वहाँ चांदनी है, जहाँ सूरज है वहाँ रोशनी है, जहाँ सागर है वहाँ लहरें है, और जहाँ सत्संग है वहाँ बाबा भी है। तो बाबा हमारे साथ साथ है ही। सब बाबा क्या कहते हैं, बच्चे मुझे यूज करो तो मैं हाजिर नहीं हुजूर हूँ। तो सचमुच में मेरे जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे अनुभव आए हुए हैं। सब मैं आज आपको मैं इस ज्ञान में किस तरह से आई वो सुनाती हूँ। आज के 16 साल पहले हमारी ट्रांसफर बम्बई से बलसाड हुई थी, और बलसाड में डॉक्टर दलजीत सिंह, वो विश्व प्रख्यात मोतियाबिंदु के खास डॉक्टर थे, तो उनके वहां मैं सोशल वर्क करती थी, सेवा करती थी निष्काम भाव से। उस समय मैं बहुत बीमार थी, मेरे चेस्ट में राइट साइड में गांठ हो गई थी। बलसार के सभी डॉक्टरों को दिखाया, बम्बई के डॉक्टरों को दिखाया, फिर भी कोई इलाज नहीं हुआ। उस समय रोहित भाई, LIC के जो रोहित भाई है, उन्होंने हमें कहा कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर अपने पास में ही है, 3 मिनट का रास्ता था सिर्फ मेरे घर से, आप वहां आइए, आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। लेकिन सुनी सुनाई अफवाहें बातें थी, लोग कहते थे कि देखो ब्रह्मा कुमारिया ना जादूगरनी है, वो भाई बहन बनाती है, आंख में सुरमा डालती है, और वो विधवा जैसी रहती है, सफेद वस्त्र पहनती है। तो मैं बोली नहीं बाबा, हमारे पास तो टाइम नहीं है, मैं ऐसे भी सेवा करती हूँ हॉस्पिटल में, और ब्रह्मा कुमारी तो मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी नहीं आऊंगी। इतनी बेकार बेकार बातें सुनी थी, तो मैंने तो उनको बोल दिया हम तो कभी नहीं आएंगे, मर जाएंगे लेकिन आऊंगे नहीं ब्रह्मा कुमार, ऐसा कहा था। कहते ना बिना योग सत्संग नहीं मिलता है। कुछ समय के बाद रोहित भाई ने हमको 2-3 बार प्रवचन के लिए बुलाया था, यानी राखी का प्रोग्राम था उस समय बुलाया था। हम आए थे, प्रवचन हमें बहुत अच्छा लगा, मगर मैं बोली वहां जाऊंगी तो हमारा घर टूट जाएगा, इसलिए फिर इस डर के मारे हम सेंटर पे नहीं गए कभी। करते करते 3 साल हो गए, ये दर्द बढ़ता था। उस समय वहां पेशेंटों, हजारों पेशेंटों को समझाना पड़ता था, और मैं वो समझाती थी, निमित्त मात्र थी, तो समझाते समझाते मुझे हरे राम करना पड़ता था। एक सेंटेंस बोलू, एक पेशेंट को एक बात समझाऊं, हरे राम करना पड़ता था। घर वाले हमारे सभी चिढ़ाते थे, और पेशेंटों को दया आती थी, बेचारे बोलते थे देखो बेचारी बीमार है, हरे राम कहते फिर भी समझाती है। डॉक्टर जी कभी कभी मुझे इंजेक्शन लगा के सुला देते थे, बोले तू बीमार है क्यों करती है सेवा, डॉक्टर जी जब तक जीऊ तब तक सेवा करती हूँ, पता नहीं कब जाऊंगी, अभी कोई ज्यादा दिन नहीं जीने वाली हूँ, क्योंकि दिन में एक रोटी भी नहीं खा सकती थी, 4 चौपड़ी के 4 लाइन भी नहीं पढ़ सकती थी। ठीक है, तो वहां के लोगों ने मुझे, पेशेंटों ने बबूति दी, किसी ने जंतर मंतर का पानी दिया, ग्रह की अंगूठी दी, फिर तावीद दिए, कहते न मरता क्या नहीं करता, तो 5-5 तावीद मेरे गले में थे, आज 1 तावीद भी नहीं है। ऐसे करते करते हमारी बलसार से ट्रांसफर बम्बई हो गई। ट्रांसफर होने के बाद रोहित भाई ने फिर से हमको पकड़ लिया, जबकि हमारे पति उनको बार बार डांटते थे कि मधुबन बार बार क्या है, जो बार बार जाता है मधुबन, अगर बार बार मधुबन जाना है तो राजीनामा दे दो। तो एक बार रोहित भाई ने कहा मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, तो आपने इतना इलाज करवाया है, तो एक बार आप ब्रह्मा कुमारी में आके देखिए। तो जबरदस्ती हमको यहाँ लेके आए, 92 में हम यहाँ आए शिविर में। आप सच नहीं मानोगे, इस धरती पे आने के बाद शांति की अनुभूति तो हुई, वो तो आप सभी जानते हो, लेकिन यहाँ जो गांठ थी, जो डॉक्टरों को दिखाया इलाज नहीं हुआ, वो यहाँ आने के बाद यहाँ की गांठ अनुभव नहीं हुआ कि है, गायब हो गई। जो मैं बोल नहीं सकती थी, हरे राम कहती थी, यहाँ एक शब्द भी नहीं लिया हरे राम का मैंने। मैं बोली सचमुच इस धरती तपस्या भूमि है बाबा की, और इस धरती पे आते ही मेरी गांठ भी गायब हो गई, मैं बोलने भी लगी, जरूर जादू है। जो कहते ना कि जादूगरनी है, ब्रह्मा कुमारी जादूगरनी है, सचमुच मेरे काम की तो है। इस तरह से फिर हम 4 दिन यहाँ रुके, रोहित भाई ने हमको दादी जी से मिलाया, दादी जी ने कहा बच्ची सेवा करने को आओगी, हम कभी ना तो किसी को ही नहीं बोलते, आज भी नहीं पले भी नहीं बोलती थी। तो हमने कहा हाँ जी, हमेशा हाँ बोलती हूँ, क्योंकि हाँ बोलती हूँ नाथ ऊपर वाला मुझे हमेशा मदद करता है, चाहे मुझे आवे या नहीं आवे, लेकिन हाँ जी बोलती हूँ जरूर। तो हमने दादी जी को कहा आऊंगी, जरूर आऊंगी। ऐसे करने के बाद हम फिर यहाँ से गए बलसार। रंजन भाई ने कहा आपको 7 दिन कोर्स करना पड़ेगा, फिर आप मुरली सुन सकती हो। मैंने कहा बाबा अभी तो सामान पैक हो गया, अभी तो बम्बई जाने वाले हैं, तो 7 दिन तो टाइम नहीं है। ऐसे करते हम बम्बई गए। बम्बई जाने के बाद हमारे सासू जी सब, हमारे रिलेटिव अड़ोसी पड़ोसी सब कहने लगे देखो ब्रह्मा कुमारी जाने का नहीं, सब अपोजिट। अभी हमने तो आंखों से देखा है ब्रह्मा कुमारी, तो बोला नहीं जाने का ब्रह्मा कुमारी। ऐसे करते करते 2-3 महीने गुजर गए, फिर से हरे राम स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ जाने के बाद में स्टार्ट हो गया, यहाँ पे खाली नहीं हुआ, इस धरती पे नहीं हुआ, बाकी वहां जाने पर स्टार्ट हो गया वापस। लेकिन ब्रह्मा कुमारी कहाँ है पता नहीं, लोगों को पता नहीं। और कांदिवली से बहुली जाने आने के लिए 2-3 घंटे लगते थे, और घर से जाना मुश्किल था, सब फैमिली साथ में थी। तो 2-3 महीने फिर से हरे राम स्टार्ट किया। फिर मैं बोली अभी तो जाना पड़ेगा ब्रह्मा कुमारी वालों के पास। तो फिर अचानक हमारे पड़ोस में एक लेडीज थी, 18 साल से टेंशन में थी, उसको कहा अब टेंशन में होना, एक ब्रह्मा कुमारी में जाएंगे तो वहां जाने से जादू हो जाती है, वो सब ठीक हो जाता है। तो वो मेरे साथ में आई, हम दिव्या बेन जी के वहां गए। फर्स्ट दिन कोर्स किया, एक आदत है कि कोई भी नोटबुक मेरे हाथ में होती है हमेशा, चाहे कहीं भी जाऊं लिखने की आदत है अच्छी अच्छी पॉइंट्स। तो हम वहां गए, वहां जाने के बाद फर्स्ट दिन कोर्स किया, मुझे सब लाइट लाइट दिखने लगा घर में। 7 दिन का कोर्स किया, 7 दिन का कोर्स करने के बाद सब लाइट लाइट। तो मैंने दीदी को कहा दीदी यहाँ तो आने के बाद गड़बड़ हो गई सब। बोला क्या, मैं जो भक्ति करती हूँ पूजा पाठ करती हूँ वो कुछ करती नहीं, यहाँ आने के बाद सब छूट गया, तो ये तो गड़बड़ हो गई। बोला नहीं ये तो बहुत अच्छा है, आपके बुद्धि में ज्ञान बैठ गया, अभी आपके द्वारा बहुत सेवा होगी। बोला मैं क्या सेवा कर सकती हूँ, बोला नहीं होगी देखना। ऐसे करने के बाद 7 दिन हम आए, उसके बाद में दीदी ने कहा कि 7 दिन का कोर्स तो हो गया, अभी आपको रोज आना पड़ेगा मुरली सुनने के लिए। हमने कहा 7 दिन तो बड़े मुश्किल से आए, अभी रोज तो आना मुश्किल है। मैं कहते ना इच्छा है तो राह मिलती है, इरादे नेक है तो सपने साकार होते हैं, सच्ची लगन यदि भगवान से तो रास्ते आसान होते हैं। इस तरह से हमारे पति ने घर में कह दिया कि भाई कुछ LIC या काम की वजह से उसको 15-20 दिन बाहर जाने दिया करो। ऐसे परमिशन मुझे मिल गई। आप सच नहीं मानोगे, 7 दिन का कोर्स किया और 15 दिन सिर्फ मुरली सुनी। 20वें के 21वें दिन यहाँ की गांठ गायब हो गई, कोई गांठ देखी लगा के गांठ ही नहीं है। और जो मैं बोल नहीं सकती थी, हरे राम करती थी, वो सब टोटल बंद हो गया। अब जैसे बात करते वैसे नॉन स्टॉप बात करने लगी, 4 लाइन नहीं पढ़ सकती थी, नॉन स्टॉप 4 पन्ने की मुरली पढ़ के सुनाई। फिर मैं बोली ये तो जादू हो गई, अब तो मैं मर जाऊंगी लेकिन ब्रह्मा कुमारी कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे कोई मुझे करोड़ रुपए भी दे उसको लात मारूंगी लेकिन ब्रह्मा कुमारी कभी नहीं छोड़ूंगी। आज छाती ठोक के मैं कहती हूँ, भले डॉक्टर हो मुझे माफ करना, लेकिन जो इलाज डॉक्टर लोग नहीं कर सकते है वो इलाज राजयोग शिविर से होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। और इस तरह से इस ज्ञान में आई, और शायद यहाँ ज्ञान में आने के बाद भी हमारी 1.5 साल से 2 साल से ट्रांसफर होती रही, जैसे पुणा है, सातारा है, सांगली है, नडियाद, नागपुर, नासिक, बहुत जगह हमारी ट्रांसफर होती रही। तो हमें कभी दुख नहीं होता है, लगता है कि बाबा सेवा के लिए मुझे भेजता है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ सेवा बाबा करवाता है, निमित्त मात्र है। हम दोनों ही पति पत्नी इस ज्ञान में चलते हैं, लेकिन पति सीनियर डिविजन मैनेजर होने की वजह से उनको कभी कभी टाइम नहीं मिलता है। फिर भी एक नियम है, घर में मुरली सुने बगैर सोते नहीं है। और अभी वो बाहर गांव गए तो फोन पे भी हम मुरली के 2 पॉइंट जरूर सुनाते हैं, और बाबा को हर पल हमारे साथ में रखते हैं। कुछ भी कार्य करना है मुझे तो पहले बाबा चल, कभी कभी आप मजाक समझोगे, कभी कभी बाबा को मैं छोटा बच्चा बनाती हूँ, लेकिन समय तो हो गया, 5 मिनट सुनाऊं तो बाबा को मैं अपना बच्चा मानती हूँ। बाबा कहते ना जैसे अनुसया ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना बच्चा बनाया, तो बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ो। तो मैं लौकिक 3 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 3 बहुए हैं, सब बाबा ने सेटल कर दिया है, तो बाबा को छोटा बच्चा बनाती हूँ। और जब कोई काम करना होता है ना तो बोलती हूँ पिल्लू चल मेरे साथ, बच्चे को पिल्लू बोलती हूँ। और आप सच नहीं मानोगे, जो कठिन से कठिन कार्य है वो मेरा पिल्लू कर देता है। लोग चक्कर में पड़ जाते, अरे आपका पिल्लू तो अजब है, सच्ची कितना बड़ा था बड़ा कार्य कर रहे। कोई बोलते ये चीज मिलती नहीं है, 2-2 महीना हो गया मेरे लौकिक पति बोलते 2 महीना हो गया ये चीज नहीं मिल रही है, और बोलते तेरे बच्चे को बोल। एक बार पुणे गए थे, पुणे में प्लेन की टिकट नहीं मिली, 1 घंटा बचा था, पुणे से फोन आया तेरे बाबा को बोल बच्चे को कि मेरी टिकट ढूंढ के दे। मैं बोले आपका भी तो बच्चा, आप बोल दो ना उसको। नहीं तू बोल, तेरे सुनता है वो। मतलब मेरा नहीं आपका भी सुनेगा। आप सच नहीं मानोगे, मैंने बोला बेटा जा टिकट ढूंढ के आ, पिल्लू टिकट ढूंढ के आ, तू छोटा सा बच्चा किधर भी जाके ढूंढ लेगा ना, जा। और आप सच नहीं मानोगे, बाबा के पास बैठ के मैं बोल रही थी, उतने में उधर से फोन आया टिकट मिल गई। मुझे कहाँ मिली? बोला बाहर से कोई एक आदमी आया, उसने पूछा आप क्या ढूंढ रहे हो, तो मैंने कहा टिकट ढूंढ रहा हूँ। ऊपर से हाथ रखा, लो टिकट। किसने किया? बाबा क्या कहता है, हाजिर ने हुजूर हूँ, सब बच्चे मुझे यूज करो, जब यूज करेंगे तो मैं हाजिर ने हुजूर हूँ। और बाबा तो प्रतिज्ञा किए कि बच्चे जब चाहे मुझे बुलाओ, सिर्फ याद करो, काम कर दूंगा। चलो ओम शांति। और सुनामी लहरे के टाइम पे ही बाबा ने ऐसे बचाया। अभी नड़ियाद में प्रॉब्लम हुआ, पानी भर गया था, आधा घंटे पहले ट्रेन खड़ी थी, 2 घंटा पहले, और ट्रेन में चढ़ी और ट्रेन छूट गई। तो बाबा बहुत बार बचाता है, बहुत सारे अनुभव है। चलो ओम शांति।
जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार।